नारं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् नाष्टवये शवदेशो नित्यं भगवदसेवया भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिके निगमकल्पातरोर्गरितं फलं सुखमुखदं ऋतदिवसंयुतं विविधभगतं रासमालयं मुहुरोराशिगभो विभावकः एते चंसाकलपुंसं कृष्णस्तु भगवान् स्वयं इन्द्रियार्व्याकुलं लोकं मृदयन्ते युगे युगे नामसङ्कीर्तनं यस्य सर्वपापप्रणाशनं प्रणामदुःखशमनस्तं नमामि हरिं परम्। तो आज हम श्रीमद्भागवतम चतुस्कंध द्वितीय अध्याय श्लोक संख्या 40 से पढ़ रहे हैं। सातस्मिन् देव सदनं आसीनो योगमास्थितः प्रत्यारितेन्द्रियाग्राम यूयो जन्मन आत्मनि सा। उसने अजमिन ने तस्मिन उस स्थान हरिद्वार में देव सदना एक विष्णु मंदिर में आसीना स्थित होकर योगम अस्थितः भक्ति योग संपन्न किया प्रत्यारित इंद्रिय तृप्ति के समस्त कार्यों से विलाग इंद्रिय ग्रामा अपनी इंद्रियों योजा स्थिर किया मना मन आत्मनि आत्मा परमात्मा या पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान पर। तत्पर्य ये अनुवाद और तत्पर्य शिला ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद के द्वारा शिल प्रभुपाद के अनुवाद। हरिद्वार में अजमिन ने एक विष्णु मंदिर में शरण ली जहाँ उसने भक्तियों की विधि को संपन्न किया। उसने अपनी इंद्रियों को वश में किया और अपने मन को पूरी तरह से भगवान की सेवा में लगा दिया। तत्पर्य जो कृष्णा जो भक्त कृष्ण भवनामृत आंदोलन में सम्मिलित हो चुके हैं वे हमारे अनेक मंदिर में सुविधा पूर्वक रह सकते हैं और भगवान की भक्ति में लग सकते हैं। इस तरह वे मन तथा इंद्रियों को वश में कर सकते हैं और जीवन में सर्वोच्च सफलता पा सकते हैं। यह विधि अनंत काल से चली आ रही है। हमें चाहिए कि अजमिल के जीवन से सीख लेकर इस बात का अनुमान अनुगमन करने के लिए जो भी आवश्यक हो उसे संकल्प के साथ करने का व्रत ले। ओम अज्ञानतिमिलन्तस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले सायं रूपागदामयं ददाति सपदन्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवंश्च श्रीरूपं सागरजातं सागनारगनतन्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादं सहगना ललिता श्रीविशकन्वितंश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनो बंधो जगत्पते गोपेश गोपिककांता राधाकांता नमस्तुते। तप्तकंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणामलि हरि प्रिय वंचकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सातस्मिन् देव सदना आसीनो योगमस्तितः प्रत्यहरितेन्द्रियाग्रामो युयोजा मन अत्मनि। हरिदास ने अजमेर ने एक विष्णु मंदिर में शरण ली जहाँ उसने भक्तियों की विधि को संपन्न किया। उसने अपनी इंद्रियों को वश में किया और अपने मन को पूरी तरह से भगवान की सेवा में लगा दिया। तो अजमेर अपने जीवन में तो सबसे पहले भगवान की सेवा की थी और ब्राह्मण कुल के थे, लेकिन दुर्भाग्यवश से अपने स्थिति से गिर गए और वैश्य के साथ रहते थे और लेकिन भगवान की कृपा तो दशम पुत्र के नाम रख दिया था नारायण। और अंत के समय जिसे अंत नारायण स्मृति, अंत के समय हमको नारायण का स्मरण करना है, तो वे अपने पुत्र का स्मरण किए थे अंत के समय, लेकिन क्योंकि नाम दिया था नारायण तो नारायण का नाम उच्चारण किए थे और इसके फलस्वरूप नारायण विष्णु के दूत भगवान के सेवक वहां पर आए थे और यमराज जाने के लिए यमराज के यमदूत उनको रोक दिया। तो नाम चिंतामण कृष्ण चैतन्य रस विग्रह पूर्ण शुद्ध निर्भुक्त अविनात्वम नाम नामिनः। कृष्ण कृष्ण नाम अभिना है या विष्णु या नारायण के नाम भगवान से अभिना है। हमको प्रयास करना है शुद्ध भाव से भगवान का नाम उच्चारण करने के, लेकिन शास्त्र के अनुसार अगर कोई भगवान का नाम लेता है मजाक में भी तो फिर भी इसका फल मिलता है, लेकिन अगर कोई अपराध करता है नाम उच्चारण के समय तो उसी समय ज़्यादा फल नहीं मिलता है, लेकिन फिर भी अगर निरंतर कोई भगवान का नाम लेता है और शुरुआत में अपराध भी करता है, ऐसे करते हुए धीरे धीरे अभास नामाभास अवस्था पर पहुंच सकता है और इसके बाद शुद्ध नाम के अवस्था पर पहुंच सकता है। तो यहाँ पर तो भगवान का नाम उच्चारण करते थे, उनके पुत्र को बुलाने के उद्देश्य से, लेकिन क्योंकि जब उच्चारण करते थे नाम नारायण के नाम, उसी समय तो प्रेम से उच्चारण करते थे, वो कोई गलत विचार नहीं था उनके मन में, इसलिए एक प्रकार के नामाभास था। लेकिन फिर भी क्योंकि उन्होंने भी गलत काम किए थे, इसलिए यहाँ पर भी अपर नाम अपराध नाम इसमें भी आ गया था। क्योंकि ऐसा ना है कि सिर्फ नाम उच्चारण के समय अगर कोई किसी के मतलब गलत विचार नहीं है, फिर भी अगर दूसरे समय अपराध करता है तो ये लग जाता है, अगर दूसरे को कष्ट देता है तो ये एक प्रकार के अपराध अपरनाम अपराध नाम भी हो जाता है। इसलिए सिर्फ नाम उच्चारण के समय तो उसी समय तो ज्यादा ध्यान देना है कि हम अच्छे तरह से भगवान का नाम कर सकता है, लेकिन दूसरे समय भी दिन भर हमको देखना है कि हम दूसरे के अपराध नहीं करता है, दूसरे को कष्ट नहीं देता है, सेवा अपराध नहीं करता है, दाम अपराध नहीं करता है। क्योंकि भगवान देखता है सबके दिल में है, परमात्मा के रूप में, और देखता है कि हम क्या कर रहा है। तो लेकिन यहाँ पर इस प्रसंग में ये अजमील तो भगवान का नाम लिया था अंत के समय, इसलिए तो यमराज जान के लिए तो भगवान की कृपा से तो बच गया। और ये विष्णुदूत के जो वार्तालाप जिन्होंने किए थे यमदूत से, इसलिए उन्होंने इससे तो उन्होंने अनुभव किया है कि मैंने बहुत बड़े अपराध किया है, पाप किया है, और इसलिए विनम्र भाव में रहते हुए तो भगवान से भी क्षमा मांगते थे। और इसके बाद तो जब यमदूत चले गया और विष्णुदूत भी चले गया तो हरिद्वार की ओर चले गए, और वहाँ पर जैसे यहाँ पर मैं उल्लेख किया है कि एक विष्णु मंदिर में भजन किए थे। ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए प्रभुपाद उन्होंने भी बहुत बार बोले थे कि हमने ये मंदिर की स्थापना की थी जिससे भक्त लोग इसमें रह सकता है और आराम से भगवान की सेवा कर सकता है। तो ब्रह्मचारी के लिए तो आश्रम है, और इसके बाद गृहस्थ लोग अगर बाहर भी रहता है मंदिर में जा सकता है और इसमें भाग ले सकता है, मंदिर के कार्यक्रम में, ठाकुर जी की सेवा में और कीर्तन में और भगवत श्रवण में। क्योंकि अकेले या जैसे अगर कोई अकेले में रहता है और गृहस्थ भी हो, सिर्फ पत्नी और बच्चे के साथ अगर रहता है तो भजन करना तो आसान नहीं है, दूसरे भक्त के संग में रहना है तब आसान हो जाता है। और उसी लेकिन ये भी आश्रम में भी रहते हुए, क्योंकि विशेष करके कलयुग में तो बदजीव के की स्थिति मतलब भजन के लिए वातावरण अनुकूल नहीं है, लंबे आयु नहीं है, और मन और इंद्रियों वश में रखना भी आसान नहीं है, क्योंकि वातावरण इसके लिए अनुकूल नहीं है। लेकिन फिर भी जब मंदिर में रहता है तो थोड़ा सा आसान हो जाता है अगर नियम का पालन करता है, अगर प्रयास कर रहे हैं मानो इंद्रियां वश में रखने के लिए, जैसे यहाँ पर मंदिर में जाता है, बहुत लोग आता है और कभी कभी तो उनके वेश भी, विशेष करके तो ब्रह्मचारी के लिए अगर सेवा कर रहा है तो देखता है कि कभी कभी स्त्री के जो वेशभूषण जो है एकदम शास्त्र के अनुसार नहीं है और इसलिए विचलित हो जाता है कभी कभी और बात करना चाहता है स्त्री से, स्त्री पुरुष से बात करना चाहता है। तो इस कारण से तो मन और इंद्रिय वश में रखना आसान नहीं है, लेकिन इसलिए आश्रम में रहते हुए सुबह शाम को तो दूसरे भक्त के साथ तो प्रयास करना, अच्छा तरह से जाप करना है, जाप करने के लिए। और जाप के समय भी प्रयास करना, चेष्टा करना, मन और इंद्रिया वश में रखना। मन बहुत चंचल है और इधर उधर घूमता रहता है हर समय, विशेष करके जप के समय, लेकिन हमको प्रयास करना, मन और इंद्रिय वश में रखने की चेष्टा हमको करना है। कृष्ण भी कहता है जो मन वश में रख सकता है, अगर मन उनके दोष बन जाता है और वश में है तब आगे जा सकते भक्ति मार्ग में, तब परमात्मा के संबंध में रहता है और भगवान श्री कृष्णा या परमात्मा प्रेरणा देता है जिससे आगे जा सकता है भक्ति मार्ग में, जिससे हम अच्छा तरह से भजन कर सकते, जप कर सकते, सेवा कर सकता है। लेकिन अगर मन वश में नहीं है तो शत्रु बन जाता है, तब अच्छा तरह से जप करना, ठाकुर जी की सेवा, अलग अलग सेवाएं अच्छा तरह से करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए हमको प्रयास करना है। और ये हमारे आचार्य, पूर्वत आचार्य श्री रूप गोस्वामी पाद, उन्होंने भी उपदेशामृत में उल्लेख किया है, प्रथम श्लोक में, वचो मनसो क्रोधावेगम जीव वेगम उत्तरपस्त वेगम मितान वेगम यो विषेतरीयर सर्वमपिमिं पृथ्वीं शशिष्यात्। वचो वेगम, तो अलग अलग ये वेग जो होता है बोलने के और ये जो प्रसाद लेने के, ये हमको वश में रखना है। मृदुल वाणी से बात करना दूसरे से, सत्य बोलना है, प्रचार करना है, भगवान के बारे में बात करना है और ग्राम्य कथा छोड़ना है। और वाणी के दूसरे कार्य है ये, मतलब जीव के, तो एक तो भगवान का नाम लेना है, प्रचार करना है, दूसरे है ये प्रसाद ग्रहण करना है। तो इसमें भी तो वश में रखना है जीव, तो प्रसाद तो ग्रहण करना है, ग्रहण कर सकता है स्वादिष्ट महाप्रसाद जो होता है, लेकिन ये भी वश में रखना है जीव। जितना शरीर चाहिए लेना है, ज़्यादा ना आए। इसके बाद मनसा, मन वश में रखना है। क्रोध, तो ये वास्तव में कभी कभी भक्त लोग सोचता है और दूसरे लोग भी सोचता है, ये मेरे शत्रु है, उसने ये किया है, वो ये किया है। लेकिन अगर कोई विनम्र भाव में रहता है और भक्त को विनम्र भाव रहना ही है, त्रिनादपि सुनिच्छिना तरुरपि सहिष्णुना अमानिना अमाननिना कीर्तनीय सदहरि, विनम्र भाव में रहते हुए हम निरंतर भगवान का नाम ले सकता है, भगवान का स्मरण कर सकता है। तो हमको प्रयास करना विनम्र भाव में रहना और मन वश में रखने के लिए, तब आगे जा सकते भक्ति मार्ग में। तो वास्तविक तो एक ही शत्रु है जीव के, ये अपना मन है। और ये भी उल्लेख किया हमारे पूर्वताचार्य ने कि ये मन के 6 प्रकार के अलग अलग जो भौतिक विकार है जो हमारे लिए ठीक नहीं है। तो जैसे है काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य, तो ये वश में रखना है। जब देखता है कि मन क्रोधित हो जाता है तो वश में रखना है। सहन करना चाहिए, कोई दूसरे को हमको कुछ बोलता है जो हमको अच्छा नहीं लगता है तो सबसे पहले क्रोध ही रोध जाता है, लेकिन ये बस में रखना है, ये क्रोध, ये ब्राह्मण, ये बस में रख, उनको बस में रखना है, वैष्णव, ये मन के जो ये स्थिति जो है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मोहित हो जाता है। तो ये सबसे बड़ा मोह है, यह है कि हम सोचते हैं हम शरीर है, और हम कभी कोई सोचता है मैं तो यहाँ का हूँ, ये विधि देश भक्त, ये तो वास्तव में तो भक्त नहीं है, जो यहाँ पर जन्म लेता है भरद्वाज में ये वास्तविक भक्त है, और मैं पुजारी हूँ, मैं अध्यक्ष हूँ, और तो बहुत सूक्ष्म यहाँ पर रेखा है आध्यात्मिक अवस्था और भौतिक अवस्था। तो लेकिन भक्त को भी नंबर बा में रहना चाहिए, समझना चाहिए मैं तुच्छ हूँ, और वास्तव में हम तुच्छ है, और जब पाद में है अगर पुजारी भी हो, लेकिन फिर भी समझना चाहिए कि हम तो वास्तव में शरीर नहीं, आप ही तो आत्मा है। और जैसे महाप्रभु एक श्लोक का उच्चारण करते थे, और प्रभुपाद भी बहुत बार उच्चारण करते थे, नाम भी प्रो नरपतिन शूद्र नाम सत्यर्वा किंतु प्रद्या निकल परमानंद पूर्णम रिप्त देर गोपी भक्त दास दास अनुदास। सबसे पहले समझना चाहिए जीवेर सो पोई कृष्णेर नित्य दास, हम शरीर नहीं अपितु आत्मा है, कृष्ण के नित्य दास है, और सिर्फ कृष्ण के दास नहीं है, कृष्ण के दास के दास के दास है। ये भक्त भी नहीं सोचता है मैं भगवान के दास हूँ, ये लेकिन फिर भी ये भी सोचना है, लेकिन और अच्छा है अगर हम सोचता है कि हम भगवान के दास है, श्री गुरु के दास है, जो भगवान के प्रिय भक्त है, गौ प्रिय जान, मुकुंद प्रेष्टा, गुरुजान उनके भक्त है, उनके दास है, उनके सेवक है, शुद्ध वैष्णव के सेवक है, शुद्ध वैष्णव वास्तव में भगवान के सेवक है, बल्ले सेवा में लीन है। तो इसलिए हम इस बात में रहना चाहिए कि हम भगवान के दास है। और इसके बाद तो ये नाम भी प्रणाचान नरपरि वैष्णव शूद्रो, तो हम एक स्थिति में है वान आश्रम के अनुसार, गृहस्थ हो, सन्यासी हो, ब्रह्मचारी हो, लेकिन इस भाव से भी रहना चाहिए कि वास्तव में हम तो कृष्ण के निंद दास है, आत्मा है, लेकिन अभी इस भौतिक शरीर में रहते हुए सड़क के शरीर में तो अभी हम ब्रह्मचारी है अभी या गृहस्थ है, लेकिन समझना चाहिए कि हम ये शरीर नहीं है। तो ऐसे करते हुए संबंध ज्ञान के साथ जप करना है या सेवा करना है, संबंधी ज्ञान हम शरीर नहीं है अपितु आत्मा है, ऐसे करते हुए नाम करना है, कृष्ण नाम महामंत्र को उच्चारण करना है और भगवान का स्मरण करना है, कृष्ण कृष्ण नाम बिना है। जैसे यहां पर मैं अंत में कहता है माना आत्मनी, मन आत्मा परमात्मा या पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान पार स्थिर किया, स्थिर करना है, मतलब कृष्ण का स्मरण करना है, या परमात्मा या आत्मा, आत्मा इसके यहां पर आत्मा नहीं, इसका अर्थ है जैसे आत्मा का अर्थ है ये अपना, तो जो हम तो शरीर ना आत्मा, आत्मा है इसका अर्थ यह है आत्मा, इसके बाद परमात्मा या पुरुषोत्तम भगवान, आत्मा का अर्थ इसमें यहाँ पर दिया गया है। तो संस्कृत के अनुसार एक शब्द का अलग अलग तो अर्थ हो सकता है, और अलग अलग विषय का अलग अलग भी संस्कृत में शब्द है। तो यहाँ पर तो आपने के आत्मा के स्वरूप में स्थिर होना चाहिए, हम आत्मा है शरीर नहीं है, इसके बाद परमात्मा पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण, और हमारे लिए यह है कि हम गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय में है तो हमारे इष्ट देव है श्री चैतन्य महाप्रभु एवं भगवान श्री कृष्णा, तो महाप्रभु या कृष्ण का स्मरण करना चाहिए, ये संबंध ज्ञान है। ऐसे करते हुए तो जप करना है, सेवा करना है, तब आगे जा सकते हैं भक्ति मार्ग में। तो तब तो ये जब आध्यात्मिक वस्त्र पे है और भगवान के शरण में है तो मन तो वश में है, लेकिन भगवान का स्मरण ना करता है तो मन वश में रखना तो बहुत वास्तव में संभव नहीं है। लेकिन शुरुआत में तो हमेशा भगवान का निरंतर भगवान का स्मरण करना संभव नहीं है, लेकिन उनके नाम उच्चारण करते हुए तो उसी समय भी तो भगवान के संबंध में है या जब सेवा में, इसे यहाँ पर भी उल्लेख किया है कि हम सेवा में लीन होना चाहिए, वे सेवा में लीन थे। तो जब सेवा में लीन है अगर कभी कभी भगवान का स्मरण नहीं कर सकते कोई बात नहीं है, क्योंकि सेवा में लीन है। और ये उसी समय भगवान ग्रहण करेंगे अपनी सेवा। लेकिन यह अत्युत्तम है, यह है कि हम निरंतर, जब हम निरंतर भगवान का स्मरण कर सकते हैं, भगवान का सुंदर रूप जैसे श्याम सुंदर शिकंद शेखर ध्यायेन नवगण श्यामम दीभुजम मुरलीधारम लसत पीत पातम राम्यम सरादम पुरुषोत्तमम, इस पुरुषोत्तम का स्मरण करना है जिनके साथ हमेशा श्रीमती रानी है। लसत पीत पातम पीला वस्त्र पहनता है, मुरलीधारम हाथ में मुरली है, द्विरूप द्विभुज रूप है, चतुर्भुज नारायण या विष्णु का स्मरण हम नहीं करता है। तो उनके सुंदर रंग है नवगण श्यामम, शारीरिक कांति जो है गणश्याम बरल के समान है लेकिन इससे भी सुंदर है। तो उन श्याम सुंदर का स्मरण करना है। तो इसलिए तो हम भी ये है कि भक्त के साथ रहना है, मंदिर से जुड़े हुए भजन करना है, शुद्ध वैष्णव के मुखर वंश से श्रवण करना है महाप्रभु के बारे में कृष्ण के बारे में, तब भगवान का स्मरण कर सकता है। जब शुद्ध वैष्णव भगवान का गुणगान करता है या नाम रूप गुण लीला के बारे में बताता है तो ये जब प्रवेश कर रहा है ये अपने कान में, और सिर्फ कान में नहीं लेकिन दिल में जब इसका स्मरण कर सकता है तब अच्छा तरह से बाद में भी जप कर सकता है। और जप के समय भी हमको थोड़ा सा प्रयास करना, अच्छा तरह से तो नाम उच्चारण करना है और श्रवण करना है नाम के, लेकिन थोड़ा सा प्रयास भी करना है जिससे हम कभी कभी भगवान का रूप का स्मरण कर सकते हैं, उनकी गुण या लीला का स्मरण कर सकता है। और जब शुद्ध वस्त्र पे है तब ये प्रकट हो जाता है भगवान के रूप बिना प्रयास। शुद्ध वैष्णव जब नाम उच्चारण करता है मां मातृ चरण करता है तो भगवान का स्वरूप प्रकट हो जाता है, और शिव उनके स्वरूप नहीं उनके परिकार उनके लीलाएं प्रकट हो रहा है और इसमें लीन हो जाता है। तो हमको प्रयास करना जिससे हम आगे जा सकते भक्ति मार्ग में, जिससे हम ज्यादा भगवान का स्मरण कर सकता है, विशेष करके जप के समय। और जब अच्छा तरह से जप करता है तब दिन अच्छा रहता है, लेकिन जब अच्छा तरह से जप नहीं होता है तो अच्छा तरह से भी नहीं होता है। लेकिन फिर भी भगवान दयालु है, कभी कभी जप नहीं अच्छा तरह से नहीं होता है, लेकिन जब प्रयास कर रहा है अच्छा तरह से जब ये सेवा करने के लिए, जब ये इसे देखकर तो भगवान संतुष्ट हो जाता है, इसके फलस्वरूप बाद में अच्छा तरह से जाप कर सकता है। और इसलिए सिर्फ सुबह तो मतलब यह है कि प्रभुपाद बार बार बोलते थे कम से कम 16 माला जाप करना है। कम से कम इसका अर्थ है कि इससे ज़्यादा करना है वास्तव में, लेकिन कम से कम 16। और एकादशी के दिन तो 25 या 25 या 32 या इससे ज़्यादा या 1,00,000। तो मतलब यह है कि सुबह ज़्यादा से ज़्यादा जाप करने की प्रयास करना है 16 माला, लेकिन बाद में भी अगर कुछ समय है तो और जब भी कर सकते हैं और करना ही वास्तव में। दोपहर के समय अगर 15-20 मिनट समय है और तो थोड़ा सा और जाप करना अच्छा रहता है, या शाम को अगर समय है और पढ़ना है ज़्यादा। और ये जो जो भौतिक जो आवश्यकता जो है ये कम से कम करना है। और ये कोई चीज़ है जो हमको छोड़ना है, जैसे गर्मकता प्रजालपा, ये वक्त ये किए वो किया है, ये बात छोड़ना है। और इसलिए विशेष करके जब वृद्धावस्था में पहुंचता है, इसलिए शास्त्र में भी उल्लेख किया है तो ब्रह्मचारी तो प्रयास कर है निरंतर भगवान की सेवा में लीन होने के लिए। यह शास्त्र के अध्ययन या नाम कीर्तन में और वानप्रस्थ भी और सन्यासी भी, विशेष करके तो सन्यासी ये आज्ञा है, दूसरे के गुरुजन बन जाता है। आदर्शों के आचरण होने चाहिए, भजन होने चाहिए, जिससे दूसरे भी इससे प्रभावित हो जाता है। और गृहस्थ को जब वृद्धावस्था में पहुंचता है तो वानप्रस्थ आश्रम में प्रयास करने की तो चेष्टा करना है। वो दो प्रकार के वानप्रस्थ है, एक जो अकेले वान की ओर चले जाता है और दूसरे जो उनके पत्नियों के साथ है। लेकिन उसी समय तो प्रयास करना ज़्यादा, जैसे यहाँ पर उन्होंने किया है अजमेल, तो सब कुछ छोड़ दिया, अंत में पत्नी को छोड़ दिया, बच्चे को छोड़ दिया, हरिद्वार की ओर चले गए हैं और एकांत स्थान में मतलब मंदिर में, लेकिन दूसरे लोग से जो भक्तनाय है उनसे दूर रहना है और सिर्फ भक्त के साथ रहना है जो अच्छे तरह से भजन कर रहा है। इसलिए शास्त्र के अनुसार ये भी उल्लेख किया है और गुरुजन कहता है कि सज्जातीय भक्त के संग में रहना है, उत्तम वैष्णव के संग में रहना है, या जो हमसे आगे है उनके साथ रहना है, जो अच्छा तरह से भजन कर रहा है उनके साथ रहना है, उच्च के साथ, उच्च निश्चित दर या तत्त कर्म प्रवर्तनात् संगत त्यागत सतोवृत्ते सद्वीर भक्ति प्रसिद्ध थी। सतोवृत्ते सदु के संग में रहना है जो आगे है, और जो जो भजन में जिनके पास निष्ठनाएं है और जो दूसरे की आलोचना कर रहा है उनसे दूर रहना है। ऐसे करते हुए हम आगे जा सकते हैं और अंत में उत्तम अवस्था पर पहुंच सकता है और तब भगवान के धाम में प्रवेश कर सकता है। और ये हमारे तो लक्ष्य है, तो इसके लिए हमको अभी प्रयास करना है जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा आगे जा सकता है, जिससे हम उत्तम अवस्था पर पहुंच सकता है। क्योंकि शिव जब तो वास्तव में जब उत्तम अवस्था पर पहुंचता है तब कृष्ण लीला में प्रवेश कर सकते हैं शरीर छोड़ने के बाद, अन्यथा फिर से जन्म लेना पड़ेगा। तो इसलिए अच्छा तरह से भजन करना है, जिसे यहाँ पर अजमील उन्होंने किया है। और यहाँ पर तो बात महत्वपूर्ण है, इंद्रियों और मन वश में रखना है, विशेष करके मन में, जब मन वश में है तो इंद्रियां भी वश में है। तो इसलिए हमको प्रयास करना तो मन और इंद्रिया वश में रखने के लिए। और इसके लिए तो हमेशा भगवान का नाम उच्चारण करना है, ये महामंत्र हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे। विनम्र भाव में रहना है, तुझको तुझके साथ अच्छे तरह से व्यवहार करना है और ठाकुर जी की सेवा करना है, प्रतिदिन शास्त्र का अध्याय करना है। ऐसे करते हुए और गायत्री मंत्र जिनके पास है अच्छे तरह से गायत्री जप करना है, ऐसे करते हुए तो हम आगे जा सकता है। हरे कृष्णा ग्रंथ राज श्रीमद भगवताम की